नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि 2003 में संथाली भाषा को संविधान के 8वीं सूची में शामिल कराना ऐतिहासिक अवसर था। पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी में अंतर्राष्ट्रीय संथाल सम्मेलन में उन्होंने ये बात कही।
2003 के संथाली समुदाय के इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा। उस वर्ष संथाली भाषा को भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। मुझे इस बात का गर्व है, संथाली भाषा को संविधान में स्थान दिलाने के लिए बहुत सारे संस्थाएं मांग किए थे, मैं भी थोड़ा उनमें से एक हूँ। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया और 2003 में संविधान के अष्टम परिषद में उसको शामिल किया गया।
इससे पहले राष्ट्रपति के सिलीगुड़ी पहुंचने पर जनजातीय कार्य राज्य मंत्री दुर्गादास उइकी ने बागडोगरा में उनकी अगवानी की। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा है कि भारत वैश्विक क्षमता केंद्र बनकर उभरा है। उन्होंने बताया कि एरोस्पेस क्षेत्र के अग्रणी कंपनी एयरबस यूरोप से बाहर अपना दूसरा सबसे बड़ा डिजिटल केंद्र भारत में स्थापित कर रही है। बेंगलुरु में एयरबस इंडिया टेक्नोलॉजी सेंटर का आज वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करते हुए श्री नायडू ने कहा कि इस इकाई में एयरबस के वाणिज्य विमान और हेलीकॉप्टरों की महत्वपूर्ण प्रणालियों को डिजाइन और विकसित किया जाएगा। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह उत्तराखंड के हरिद्वार पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका स्वागत किया। श्री शाह राज्य सरकार के 4 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित जन जन की सरकार 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम में शामिल होंगे। गृह मंत्री कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। आज जन औषधि दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना से लाभान्वित लोगों को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि परियोजना से अनगिनत परिवारों के इलाज के खर्च में बचत हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार किफायती कीमतों पर गुणवत्तापूर्वक दवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री कल नई दिल्ली में लगभग 33,500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। वे लगभग 18,300 करोड़ रुपए की दिल्ली मेट्रो परियोजनाओं का भी उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी दिल्ली मेट्रो के 2 नए गलियारे का भी उद्घाटन करेंगे। इनमें लगभग 12.3 किलोमीटर लंबा मजलिस पार्क, मौजपुर बाबरपुर पिंक लाइन कॉरिडोर और लगभग 9.9 किलोमीटर लंबा दीपाली चौक मजलिस पार्क मेजेंटा लाइन कॉरिडोर शामिल है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर नई दिल्ली में एक कार्यक्रम को संबोधित करेंगी। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी और राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगी। कार्यक्रम में सशस्त्र बल, पुलिस और अन्य क्षेत्रों सहित 150 मंत्रालयों, विभागों और संगठनों से लगभग 1,000 महिलाएं भाग लेंगी। घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की कीमत आज से 60 रुपए बढ़ गई है। ये दर महानगरों में लागू होगी। सरकार ने सोशल मीडिया की इन खबरों का खंडन किया है कि बिहार और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को मिलाकर सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया जा रहा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि सरकार के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। सरकार ने लोगों से भी अपील की है कि वे आधिकारिक स्रोतों की सूचना पर ही भरोसा करें, किसी भी सूचना को साझा करने से पहले उसकी पुष्टि कर लें। पश्चिम एशिया में सैन्य संघर्ष के 8वें दिन भी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। अमेरिका, इसराइल और ईरान ने हवाई और ड्रोन हमले जारी रखे हैं। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल को 15 करोड़ डॉलर से अधिक के हथियार बेचने की मंजूरी दे दी है। आज तड़के ईरान की राजधानी तेहरान पर फिर हवाई हमले हुए। इसराइली सेना ने तेहरान पर फिर हमले की चेतावनी दी है। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत आमिर सईद इरवानी ने कहा है कि अमेरिका और इसराइल के हवाई हमलों में अब तक 1,332 लोग मारे गए हैं। नेपाल में आम चुनाव में बालेंद्र शाह की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी आरएसपी प्रचंड जीत की तरफ बढ़ रही है। आरएसपी ने काठमांडू जिले के सभी 10 निर्वाचन क्षेत्रों पर जीत के साथ 34 सीट पर विजय हासिल कर ली है और 86 पर आगे है। बालेंद्र शाह ने 4 बार के प्रधानमंत्री रह चुके सीपीएन यूएमएल के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली के गढ़ झापा 5 में 42,543 सीटों से जीत हासिल की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।